मोमिनीन, आज एक रजब है और माशाल्लाह आज ही सूरह मरियम की शुरुआत है। अल्लाह सुबह ताला से दुआ है बेहक़ महमद आल ताहरीन, अल्लाह सुबह ताला इसकी तफसीर मुकम्मल कराए इंशाल्लाह। ये जो पांच हरूफ हैं, ये काफ हा या ऐन स्वाद, इनको कहते हैं हरूफ मुकत्तात, मतलब जुदा जुदा हर्फ। तो इसके बारे में मीज़ान ने कहा है कि ये जो बहुत से सूरों में एक जैसे हरूफ हैं, ये तो उनके टॉपिक भी एक जैसे हैं। ये खूबसूरत बात कही उन्होंने कि उसके टॉपिक भी मिलते जुलते से हैं। तो ये जैसे ये काफ हा या ऐन स्वाद के बारे में काफ़ी अलग अलग रिवायतें हैं, लेकिन जो सबसे मशहूर ये है कि काफ से मुराद काफ़ी है, मतलब अल्लाह काफ़ी है, मतलब अल काफ़ी से मुराद है उसका जो नाम है। हाँ से मुराद अल हादी है, हिदायत करता है, अल्लाह काफ़ी भी है, अल्लाह हिदायत करता है। या से मुराद अल्लाह वली है, और ऐन से मुराद आलिम है, अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है, और स्वाद से मुराद है अल सादिक अल वादा, मतलब अल्लाह का वादा सच्चा है। तो ये हैं, बाद में और भी अलग अलग हैं, मतलब के रिवायतें हैं और अलग अलग मतलब निकाले गए हैं, लेकिन एक ही नहीं है, मतलब ये कहने का मतलब है। तो यही अल्लाह ताला बताना चाहता है कि ये जुदा जुदा जो मैंने हरफ रखे हैं, इसको मैं मिला देता हूँ तो बन जाता है कुरान। तुम भी ऐसा कुछ लिख के ले बता दो हमको, अल्फाजी तो हैं और है क्या कुरान में, अल्लाह कहता है हम इनको जोड़ दिए, तुम भी जोड़ दो। सूरह कौसर भी के वही लोग मुकाबला नहीं कर पाए, तो पूरा कुरान तो आप जो भूल जाए। जिक्र रहमत रब्बी का अब्दहू जकरिया, तुम्हारे रब की रहमत का जिक्र है जो उन्होंने अपने बंदे जकरिया पर की थी। अल्लाह तुम्हारा जिक्र कर रहा है रहमत का, जिक्र अपने बंदे जकरिया पे। अब क्या क्या रहमत नहीं करी, दुनिया का वानो पैगंबर बनाया, इज्जतें दी, बुढ़ापे में बेटा दिया, हर तरह के दर्जात से उनको अल्लाह ने नवाजा। तो अल्लाह सुब्हान तआला उस रहमत का जिक्र कर रहा है, उसमें सबसे बड़ी जो रहमत है वो याह अलैहि सलाम थे। इद नादा रब्बहु निदान खफिया, जब उन्होंने अपने रब को चुपके चुपके पुकारा था, निदान, अल्लाह को चुपके चुपके पुकारना बहुत पसंद है। इंसान चाहते हमको चाहिए कि चुपके चुपके पुकारें अल्लाह को। अब इसमें यह है कि पुकारा भी निदा, मतलब जोर से पुकारा, और खफिया भी पुकारा चुपके चुपके, तो समझ में नहीं आया लोगों को क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये कि किसी मेहराब में अकेले बैठे हुए थे तो चुपके ही हो गया, और फिर वहाँ जोर से पुकारा, तो दोनों बातें पूरी हो गई। अच्छा ये भी है, चुपके चुपके अल्लाह को बहुत अच्छा लगता है, कुरान ने बार बार कहा चुपके चुपके अल्लाह को पुकारा करा कर। तो उसमें यह है कि चुपके चुपके को पुकारा था, तो बासा कहना है कि जो दुआ मांग रहे थे वो बुढ़ापे में बच्चे की दुआ मांग रहे थे। लोग कहते कि लोग हंसते उन पर कि ये क्या बुढ़ापे, इतनी उम्र में आप ही दुआ मांग रहे का बेटा हो जाए। तो ये भी कहने वालों ने कहा है, मतलब कि तफसीर में है। अच्छा अब इसमें भी दो है कि जो जोर से को पुकारा, तो जोर से पुकारे बारे में ये कि हाँ निदा है तो है तो जोर से, लेकिन बास का कहना है कि वो निदा इसलिए जोर से पुकारा था उन्होंने, बास का कहना ये कि वो अपने आप को अल्लाह से थोड़ा दूर समझते थे रूहानी तौर पे। तो चूंकि जोर से दूर समझते थे, मीज़ान का कहना है, चूंकि अपने आप को गुनाहगार समझते थे, हालांकि गुनाहगार नहीं थे, मासूम थे, लेकिन एक उनकी आजिज़ी थी कि अपने आप को अल्लाह से दूर समझते थे तो जोर से पुकारा। काला रब्बी इन्नी वहन अलमो मिन्नी वस्त अर रासू शैबाँ वलम अकुम बि दुआ रब्बी का शकिया, कहा कि मेरे परवरदिगार मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं और सर में बुढ़ापे के शोले भड़क उठे हैं, और मैं तुझसे दुआ तलब करके कभी ना मुराद नहीं रहा। अल्लाह अकबर। इसके अंदर दो बार रब्बी आया है, काला रब्बी, अल्लाह पहले ये दुआ का तरीका है कि रब को पुकारे आज मेरे रब्बी, मेरे रब, फिर आखिरी में फिर आया क्या भी दुआ रब्बी शकिया, फिर रब्बी का है, दो बार का है, खूबसूरत है। अल्लाह को बहुत पसंद आता है कि रब्बी कह रहे आप पुकारो उसको, तो वो सुनता है। क्या कहा کہ بڑھاپے ربی انی وہاں عظم منی، کہا کہ پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، کیونکہ ہڈیاں ہی وہ ہوتی ہیں جو کہ انسان کو سپورٹ کرتی ہیں بدن میں. جب آپ کہتے ہو کہ ہڈیاں کمزور ہو گئی، مطلب میرا بدن کمزور ہو چکا ہے، اب میں بڑھاپے اور سر میں بڑھاپے کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں. کیا مطلب ہے سر میں بڑھاپے کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں؟ جب کالے بالوں میں سفیدی آنے لگتی تو ایسا لگتا ہے کہ سفیدی پھیل رہی ہے. تو اس کو جس طرح سے جو کہا تھا زکریا علیہ السلام نے کہ شعلے بھڑک رہے ہیں، مطلب کہ سفیدی پھیل رہی ہے، شعلے نہیں پھیل جاتے ہیں چاروں طرف، اسی طرح وہ پھیل رہے ہیں میرے سر میں. ایک طریقہ تھا ہم کو کہنے کا، بڑا خوبصورت طریقہ تھا کہنے کا. وہ پھر کیا کہا کہ میں تو اس سے دعا کلر کر کے کبھی نامراد نہیں رہا. سبحان اللہ، کبھی ان کی دعا ایسی، مطلب اللہ نے ہر دعا ان کی قبول کری تھی. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو بھی زکریا علیہ السلام کے رستے پہ چلا اور محمد علیہ کے رستے پہ چلا، تاکہ ہم بھی گناہ سے بچیں، تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں. کیونکہ اگر اپن دعا میں پڑھتے ہیں کہ دعا کو میں نے مولا متقین کہتے ہیں کہ ہمارے گناہ کی وجہ سے ہماری دعائیں رک جاتی ہیں. اب انبیاء یہ دعائیں کہاں رکتی تھیں؟ معاملہ ہی صاف تھا، ہمارے مسئلے خود کے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ نے نہیں سنی، مسئلے ہمارے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی پاک و پاکیزہ بنا ہے. وہ انی خفت موالی می ورائی پکانات امرأت عاقرا فہب لی من لدنک ولیا، اور میں اپنے بعد اپنے وارثوں کے بارے میں خوف زدہ ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، لہذا تو وارث عطا کر دے. وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَجَعْلُ رَبِّي رَضِيًّا، جو میرا بھی وارث ہو اور آلِ یعقوب کا بھی وارث بنے، اور اے میرے پروردگار تو اسے پسندیدہ بنا. یہ بڑی زبردست آیتیں ہیں، اس پہ بڑی لمبی بحث ہے. جب بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہ کا حق چھینا گیا تھا باب فدق، تو وہ خلیفہ کے پاس گئی تھی اور اپنا حق مانگا، کیونکہ بابا نے وصیت کری تھی کہ یہ باغ میری بیٹی کو جائے گا. تو خلیفہ نے کہا کہ نبیوں کو کوئی وارث نہیں ہوتے. تو بی بی نے آیتیں پڑھی تھی، بی بی نے آیتیں پڑھی تھی، یروسنی وروسنی آل یعقوب وجعلوا ربی رضیا. بی بی نے کہا تھا کہ جب کہ یعقوب کو وارث اللہ یحییٰ علیہ السلام کو بنا سکتا ہے، تو کیا میں اپنے بابا کی ورثے سے چیز نہیں لے سکتی کیا؟ یہ آیتیں پڑھی تھی. اب یہ بحث ہے کیا ہے؟ آیتیں تو پڑھ دی، بحث یہ ہے کہ جو کہہ رہے تھے کہ ورثے میں ہو وارث ہو، میرا بھی ہو، علی یعقوب ہو یا وارث ہو، تو وہ کون سی وراثت کی بات کر رہے تھے؟ اپنے مال کی وراثت کی بات کر رہے تھے، یا اپنے علم کی وراثت کی بات کر رہے تھے، یا اپنی نبوت کی وراثت کی بات کر رہے تھے؟ یہ بحث ہے. تو اس کا جواب میزان نے بہت لمبی بحث کری ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے لب الباب کے پیغمبری ورثے میں نہیں آتی ہے. کبھی بھی پیغمبری، کہ ایک پیغمبر ہو تو آٹومیٹک دوسرا پیغمبر نہیں بن جاتا، مطلب کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، تو پیغمبری ورثے میں نہیں آتی. علم بھی ورثے میں نہیں آتا ہے، کہ میں عالم کا بیٹا دوسرا عالم نہیں بن سکتا جب تک وہ بیٹھ کے پڑھے نہیں اور محنت نہیں کرے، مطلب ورثے میں نہیں آ جائے گا، وہ اس کو محنت کرنا پڑے گی. ورثے میں جو چیز آتی وہ آتی ہے، مال آتا ہے، مال ورثے میں آتا ہے. اچھا، اس میں بھی کہا کہ اس کو ولی بنانا، تو ولی بنانا جو مطلب کیا ہو، جو کہ جو میرا اس سے وارث ہے، تو اس کے لیے بیٹا ہی ولی ہوتا ہے. مطلب بیٹا جب مانگتے تو وراثت مال کی وراثت کے لیے مانگتے. پھر دوسرا کیا ہے کہ اس میں ہے انی خفت موالی، میں اپنے موالیوں سے خوف زدہ ہوں. تو کون ہوتے ہیں موالی؟ کون ہوتے ہیں موالی؟ وہ ہوتے ہیں جو آپ کے چچا اور چچازاد بھائی، یہ موالی ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ بحث ہے کہ اگر موالی سے خوف زدہ تھے تو کائے کے لیے خوف زدہ تھے؟ اپنے مال کے لیے خوف زدہ تھے، یا اپنی نبوت کے لیے خوف زدہ تھے، یا اپنے علم کے لیے خوف زدہ تھے؟ اگر ہم یہ مان لیتے کہ وہ خوف زدہ تھے نبوت کے لیے یا علم کے لیے، تو ایسے کیسے یہ تھے نبی معاذ اللہ کہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میری نبوت اپنے دوسرے خاندان والوں کو چلی جائے؟ یہ کوئی خوف ہوتا ہے کیا؟ یہ خوف نہیں ہوتا. کوئی نبی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ خوف کرے کہ वो तो चाहेगा कि सभी आगे बढ़ जाएं रूहानी तौर पे। हर रूहानी आदमी चाहता है कि लोग उससे बेहतर हो जाएं। हरा यही तो रूहानियत होती है कि आप दूसरों को अपने से बेहतर समझो और उनके लिए आप अच्छा चाहो। ऐसे कैसे नबी हो सकते हैं माजल्ला जो कहें कि नहीं वो मैं खौफ है कि वहाँ वहाँ नबी को चले जाएगी, तो ऐसा नहीं है। खौफ माल का था। क्यों था माल का? क्योंकि जो उनकी जोजा थी वो उनको पास पैसा आया था, वो दाऊद अलैहिस्सलाम के खानदान की थी, उनके पास काफ़ी माल था। उनको खौफ ये था कि अगर इंतकाल हो गया तो ये जो मेरे चचाजाद बेटे हैं हो सकता है उस माल को लेकर गलत काम में खर्च कर दें। ये खौफ था। अब इसके अंदर आगे ये है कि जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ करी थी तो उस वक़्त उन्होंने देखा था कि बीबी मरियम के पास बड़ी अल्लाह की रहमतें आ रही हैं। उन्होंने देखा था बीबी मरियम जब मेहराब में बैठती थी तो उनके पास अल्लाह के पास रिस्क आता था। सर्दी में गर्मी के फल आते थे, गर्मी में सर्दी के फल आते थे, तो उनको भी जोश आ गया बुढ़ापे में कि जब अल्लाह ने मरियम को ये दिया है तो मैं भी दुआ करूँ और मैं भी मांग लूं अल्लाह से। तो क्या मांगा फिर उन्होंने? वो जालो रब्बी रदिया, अल्लाह ऐसा तू मेरा बेटा देना जिससे तू राजी हो जाए, जिससे तू राजी हो जाए। ये मांगा था। आपका मांगा क्या था? कहा राजी हो जाए। तो राजी से क्या मुराद है? अब अगर वो नबी मांगते होते कि मुझे वर्षे में नबी चाहिए तो फिर राजी क्यों कहते? क्योंकि राजी का दर्जा तो छोटा है, नबी का दर्जा बड़ा है। तो इसका ये भी बहस है कि नबी का दर्जा बड़ा होता है राजी की जरूरत क्या थी? तो राजी से क्या मतलब था उनका? तो राजी से उनका मतलब ये था कि रूहानी तौर पर जैसे मरियम बीबी दिख रही थी जिनके पास रूहानियत भी थी और इल्म भी था, ऐसा बच्चा हो जिसमें रूहानियत भी हो और इल्म भी हो और अमल भी हो। तो यहाँ अलैहिस्सलाम इस तरीके से उन्होंने मांगे थे, या ज़करिया इन्ना नुबरशुक बि गुलाम निस्नहु यहया लम नजालु लहू मिन कबलु समिया। या ज़करिया इन्ना नुबरशुक बि गुलाम निस्नहु यहया लम नजालु लहू मिन कबलु समिया। ये ज़करिया हम तुम्हें एक बेटे की खुशखबरी सुनाते हैं जिसका नाम यहया होगा, उससे पहले हमने किसी को इसका हम नाम नहीं बनाया। तो फिर क्या खबर दी? ये खबर दी फरिश्तों के जरिए। क्या दी? जब उन्होंने दुआ करी तो मेहराब में फरिश्ते पुकारे, कहा कि हम तुम्हें खुशखबरी देते हैं यहया की, इससे पहले ये नाम का कोई था ही नहीं। तो बास का कहना यह भी है कि इससे मुराद ये भी है कि नाम का तो था ही नहीं लेकिन औसाफ का भी इससे पहले कोई नहीं था। अब कौन से औसाफ थे? उनसे पहले, उसके बाद ये पहले आए दुनिया में, उसके बाद आए ईसा अलैहिस्सलाम। तो जब ये जब पहली बार आए थे तो अल्लाह सुब्हान व तआला इनके बारे में कुरान में कहा कि हमने इनको हमने लड़कपन में ही दानाई दी थी। इससे पहले कोई नहीं था जिसको कोई लड़कपन में दानाई मिल जाती, कोई भी पैगम्बर ऐसा नहीं था। या फिर ये कि जैसे इसी में है, इस सूरह में आया था कि उन पर सलाम है जिस दिन वो पैदा हुए थे और उन पर सलाम है जिस दिन वो इंतकाल फरमाएंगे और सलाम है जिस दिन वो वापिस क़यामत दिन दोबारा खड़े किए जाएंगे। तो तीन सलाम है इन पर, ये सलाम इन पर भी है और ईसा अलैहिस्सलाम पर भी सलाम है, लेकिन ईसा बाद में आया, ये पहले आया तो पहले सलाम इन पर हुए ना। तो इस तरीके से इनकी जो औसाफ थे ऐसा कोई था नहीं, अल्लाह जिसको चाहता इज्जत देता। काला रब्बी अन्ना यकूनु ले गुलामु व कानत इमरतु आकिरु व कद बलगतु मिन किबरी इतिया। कहा ए मेरे रब, भला मेरे यहाँ बेटा कैसे होगा? मेरी बीवी तो बांझ है और मैं बुढ़ापे की आखिरी हद को पहुँच चुका हूँ। तो उन्होंने ताज्जुब करा कि मेरे यहाँ कैसे बेटा होगा जबकि मेरी बीवी बांझ है और मैं बुढ़ापे की आखिरी हद तक पहुंचूंगा। इतिया से मुराद ये है कि कोई जो आखिरी बुढ़ापे की हद को पहुंच जाए, एकदम बूढ़े हो गए थे। अब ये बहस है इसमें कि इन्होंने सवाल किसे कर लिया है, अन्ना यकून गुलाम, कैसे वो पहुंचा? क्या उनको क्या ईमान नहीं था क्या इस बात पे? क्या अल्लाह की बात पे ईमान नहीं था क्या? तो उसकी मिसाल ये है जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था अल्लाह सुब्हान व तआला कि अल्लाह ताला तू क्यों कर मुर्दों को जिंदा करेगा, तो कहा कि अल्लाह ने कहा कि तुमने इस बात को बावर नहीं करा क्या, तो कहा कि मेरे कल्ब को जरा सुकून आ जाए, बावर तो कर लिया मैंने। इसी तरह इनका था कि ईमान तो था, जब बाद जब फरिश्ते बताया कि बशारत हो गई तुम्हें, ईमान तो था, यकीन तो आ गया था, लेकिन फिर भी एक दिल को सुकून लाना चाह रहे थे, वो सुकून लाना चाह रहे थे, एक दिमाग में ख्याल आया, ऐसा एक बेचैनी पैदा हुई, तो वो बेचैनी। इसलिए मौला मुत्तकियान के लिए कहते हैं कि आसमान के सारे पर्दे भी हटा दो तो मेरे ईमान से कोई फर्क नहीं आने वाला, वो मौला या अली मौला, या मौला, मौला की जितनी मदा करें कम है मौला मुत्तकियान। काश हम मौला को थोड़ा समझ लेते, कुछ मारफत मौला मुत्तकियान की मिल जाती। माशाल्लाह एक रजब ये महीना इमामों का महीना, इस महीने में हम जितनी इमामों की मारफत कर लें कम है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो उन्होंने अच्छा इनको ये भी हो गया था मसला कि इनको जो आवाज़ जब आई थी तो उनको ये लगा था कि आवाज़ फरिश्तगी की शैतान की है, क्योंकि बस वैसे शैतान की भी आ सकते हैं ना कि फरिश्ते, तो ये भी इनको खौफ था इसमें। तो जब इन्होंने सवाल करा तो अल्लाह सुब्हानहू ने जवाब दिया, काला कज़ालिक काला रब्बुका हुवा अलैया हय्यिनू व कद खलक़्तु मिन क़ब्लु व लम तकु शैआ, फरमाया हाँ ऐसा ही होगा, तुम्हारा रब फरमाता है क्या कि ये काम तो मेरे लिए बहुत आसान है, इससे पहले मैं तुम्हें पैदा कर चुका हूँ जब कि तुम कुछ भी ना थे। अल्लाह ने कहा मेरे लिए काम बहुत आसान है, मैं तुमको पैदा कर चुका हूँ जब तुम कुछ भी नहीं थे, मतलब कुछ भी नहीं थे तुम जकरिया, और मैंने तुम्हें पैदा कर दिया, तो क्या तुम शक कर रहे हो कि मैं बुढ़ापे में बेटा नहीं दे सकता, क्या तुम तो कुछ भी नहीं थे, या अल्लाह हम क्यों नहीं सोचते, हम अल्लाह से परेशान होंगे बड़ी बड़ी अल्लाह कैसे होगा, लेकिन हम सोचते कि पहले कुछ भी तो नहीं था, पूरी कायनात ही नहीं थी भाई, अल्लाह पूरी कायनात को वजूद में लाया। इसी तरह कुरान में ना सूरह अंबिया में कि हम जिस दिन इस आसमान को दूसरे आसमान से बदल देंगे, ये उसमें सूरह इब्राहिम में जिस दिन दूसरा आसमान बदल देंगे, अल्लाह ताला जो चाहता कर देता है, जमीन को दूसरी जमीन से बदल लेंगे, सूरह इब्राहिम है। अच्छा सूरह अंबिया में कि हम आसमान को खतों के तूमा की तरह समेट लेंगे, उसमें ये है खतों को तूमा हम आसमान को समेट लेंगे, उसमें समेटना है इधर आसमान को बदलना है, अल्लाह जो चाहता करता है, हमको अल्लाह की मार्फत ही नहीं है, हम सोचते हैं ये कैसे होगा, अरे पूरा का पूरा तो अल्लाह की, पूरी कायनात अल्लाह की भाई। तो फिर उन्होंने क्या कहा, खाला रब्बिज अली आया काला आया तो का अल्लाह तुम नास लयालिन सविया, कहा कि मेरे परवरदिगार तू मेरे लिए कोई निशानी करार दे, इरशाद फरमाया तुम्हारी निशानी यह है कि तुम तीन रातों तक लोगों से बात न कर सकोगे। उन्होंने कहा कुछ निशानी तो हो, मेरा दिल को सुकून तो मिले, दिल को सोच के ये होने वाला है, और ये आवाज़ जो आई थी फरिश्तों की आई थी, और कुछ निशानी मिले, तो कहा कि हाँ कि निशानी है कि तुम सही सालिम होके भी लोगों से तीन रात, मतलब तीन रात में तीन दिन भी शामिल होते हैं, लोगों से बात नहीं कर पाओगे, ये अल्लाह की निशानी थी, तो ऐसा ही हुआ उनके साथ, सिवाय ये कि वो तस्बीह कर पाते, उसके अलावा वो कुछ लोगों से बात नहीं कर पाते, तीन दिन तक उन पर ये रहा सा। अच्छा इसमें ये एक बात बताना चाहता हूँ मैं कि जब ये बशारत आई थी ना कि उनको बेटा होगा, उसके बाद इमाम मोहम्मद बाकर सलाम फरमाते हैं दुरूद पढ़ें अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बशारत के पाँच साल बाद इमाम पाँच साल बाद यहाँ अलैहि सलाम दुनिया में आए थे, उस दुआ कबूल होने के बाद पाँच साल बाद आए थे, एक हमको देखो आपके हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से दुआ करते करते चार दिन दो महीने दुआ कबूल नहीं हो तो हम सोचते हैं कि बात ख़त्म हो गई है, ये हमारे मसले हैं, और अल्लाह से शिकवे शिकायत शुरू और झगड़े शुरू और दूरी शुरू, ये हम हैं, ये हम हैं। एक तो हमारे गुनाह, ऊपर से नाउम्मीदी, ऊपर से गुस्से में आ जाना, अल्लाह से राजी नहीं रहना, ये नहीं कि हम थोड़ा सबर करके अपने दर्जों को बढ़ा, नहीं हम बस परेशान हो जाते हैं और हम अल्लाह से रूठ भी जाते हैं। तो ये कुरान जब हम पढ़े तो हमको अंबिया की सुन्नत सीखना चाहिए कि अल्लाह अंबिया कैसा किया करते थे, हम दुआ करते हैं रजब के महीने में अल्लाह ताला हमको अंबिया की सुन्नत पे चला, हमको भी थोड़ा इस्तकलार और करार और सब्र हमारी तबीयत में। فخر. تو اس کے بعد کیا ہوا پھر؟ فخرج علی قومه من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ و عشیا. تو وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے اور وہ اشارے سے انہوں نے ہدایت کی کہ صبح شام اللہ کی تسبیح کرو. تو تفسیر میں کہ تسبیح سے مراد نمازیں بھی ہیں. تسبیح تو مطلب اللہ کی پاکی بیان کرنا، لیکن اس سے مراد نماز بھی ہے. محراب کیوں کہتے ہیں؟ محراب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہاں ہم جنگ لڑتے ہیں شیطان سے، اس کو محراب کہا جاتا ہے. تو وہ محراب میں تھے، تو محراب سے باہر آ، جب ان کو خوشخبری ملی اور باہر آ کے اب زبان سے تو زبان بند ہو گئی تھی، تو اشارے سے انہوں نے کہا کہ قوم سے کہا کہ اب، کیونکہ یہ جو فضل جو ہونے والا تھا اکیلے ان پہ تو نہیں ہونے والا تھا، قوم پہ بھی ہونے والا تھا نا. یحییٰ علیہ السلام آنے والے تھے، ایک عظیم پیغمبر آنے والے تھے جو کہ ان پہ احسان کریں گے. تو کہا کہ اب تم بھی اللہ کی پاکی بیان کرو قوم، لیکن کچھ بول نہیں پائے ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نشانی ظاہر کری تھی. واقعات یحییٰ علیہ السلام کے اور امام حسین علیہ السلام کے ملتے جلتے ہیں، کیونکہ البت سے روایت ہے کہ صرف دو شخصوں پر آسمان نے گریہ کرا ہے، ایک تو یحییٰ علیہ السلام پر اور امام حسین علیہ السلام پہ. تو پہ گریہ کرا ہے، گریہ کیسے کرا ہے؟ امام حسین پہ پورا لال ہو گیا تھا آسمان. اور البت سے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو یحییٰ علیہ السلام کا قاتل تھا اور امام حسین کا قاتل تھا، دونوں ناجائز اولاد تھے، دونوں ناجائز اولاد تھے. کاف ہا یا عین صاد سے مراد یہ بھی ہے کہ کاف سے کربلا، ہا سے ہلاکت، اور یا سے مراد یزید، اور عین سے مراد عطش، اور صاد سے مراد صبر بھی ہے، جو کہ امام حسین نے کر کے دکھایا. جس طریقے کی تکالیف اہل بیت پہ آئی، کسی پہ نہیں آئی، نہ کسی پہ آئی ہے نہ آئے گی. ہم بھی پڑھ رہے تھے کہ زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں دعا کری کہ میرے اولاد دے، اور ایسی اولاد ہوئی ان کی، اتنی شاندار اولاد ہوئی کہ اللہ نے ان کو شہادت دی. ایک ہم دعا مولا متقیان کی دیکھتے ہیں کہ مولا متقیان رات کے اندھیرے میں گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ مجھے ایسا بیٹا دے جو کہ بہادر ہو، قوی ہو. مولا متقیان کی نگاہوں میں کربلا تھا کہ کربلا کا وہ منظر جب وہاں پر پیاس ہوگی، عطش ہوگی، اور میرا حسین اکیلا ہوگا، تو ایک میرا بیٹا ایسا ہونا چاہیے جو کہ اس جنگ کے اندر میرے بیٹے کی نصرت کرے. ہائے عباس، کیسی جنگ آپ نے لڑی، ایسی جنگ نہ دیکھی نہ سنی نہ ہوگی، یا مولا یا عباس. الحمدللہ رب العالمین.